टमाटर कुछ ललन टॉप सुनते हैं।
कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। किताबें मेरी दोस्त हैं, कभी फंसा देती हैं, कभी हंसा देती हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये किताबों की दुनिया ही मेरी दुनिया है, लेकिन इतना खुदगर्ज भी नहीं कि अपनी ये खुशी आपसे ना बांटूं। इन किताबों को, इनकी खुशबू को, इनके लेखकों को आप तक लेकर आता हूँ मैं किताब वाला में। सुनिए किताब वाला मेरे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ सिर्फ बाजा पर।
मेरी जिंदगी में अभी वीकेंड प्लान जैसा शब्द नहीं आया है, इसलिए पिछले हफ्ते एक दोस्त से OTT का सब्सक्रिप्शन उधार लिया और एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी देखी। उसके बाद से इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका बज रहा, गजगामिनी वॉक और तमाम तरह की रील्स आती रहीं। तो लगा कि उसमें कई जो बहस उत्पन्न हुई वो ये थी कि तवायफ क्या हैं, तवायफ और सेक्स वर्कर्स में अंतर क्या है, हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी तवायफें हैं जिनका बड़ा सम्मानित नाम रहा है, और तवायफों की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो प्रॉपर 90 ईयर्स का फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें क्या योगदान रहा है। उस सब पर बात करने के लिए कुछ और खोजबीन शुरू हुई और रिसर्च में मुझे एक बहुत ही सुंदर सी किताब हाथ लगी। इसका नाम है डांस टू फ्रीडम, फ्रॉम घुंघरूज टू गन पाउडर। इसे लिखा है AK गांधी साहब ने। AK गांधी साहब हिस्टोरियन हैं, मेरठ में रहते हैं। उससे पहले वो इंडियन एयरफोर्स से भी जुड़े हुए थे और उन्होंने 1857 पर, महाराणा प्रताप पर, शिवाजी पर और भी कई तरह की किताबें लिखी हैं जो कई बार स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के तौर पर भी चलाई गई हैं। AK गांधी साहब आज किताब वाला में हमारे साथ हैं। मेरा नाम दीपक है, स्वागत है सर आपका।
थैंक यू।
सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा विभ्रम बना रहता है। अदब के जो कायदे के लोग हैं वो भी उसमें कई बार बहुत ज़्यादा वर्ड प्ले करते हैं लेकिन एक क्लैरिटी का आंसर नहीं आ पाता है। तवायफ किसे कहते हैं सर, कौन होती थी तवायफें?
देखिए, जब पुराने ज़माने में मुगल टाइम तक जब कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, मनोरंजन के साधन के लिए लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो तवायफों के पास जाते थे। वहाँ मुजरा शायरी वगैरह होता था और नृत्य होता था, डांस होता था, और जो तवायफ थी ये वेल ट्रेन होती थी। मतलब वो उस प्रोफेशन में जनरली बहुत छोटी आयु से उसमें आ जाती थी और कोठी के अंदर ही वो जो पूरा सिस्टम होता था उसमें उनकी ट्रेनिंग का, उनका मैनेजमेंट का, उनके कपड़ों का, उनके जो भी जितनी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सब उसके अंदर ही भीतर ही इंतजाम होता था। इन हाउस अरेंजमेंट जिससे कह सकते हैं हम, वो सब कुछ होता था। और तवायफों को बेसिकली आप प्रोस्टिट्यूट से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हर प्रोफेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव लोग होते हैं, ये बात सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर वोटरीज ऑफ कल्चर। तो क्योंकि जैसे आप कथक की बात करें तो कथक जिसको इवॉल्व किया है वो तवायफ है,
ठुमरी है, दादरा,
ठुमरी है, दादरा, हाँ यस। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तवायफों ने इवॉल्व की हैं, डेवलप की हैं उन्होंने। तो इसलिए जो उनका रोल है हमारी कल्चर में वो बहुत ही अनूठा है, और ये एक कारण है कि जो अमीर लोग होते थे, खासकर जो नवाब होते थे, वो अपने बच्चों को तवायफों के पास इसके लिए भेजते थे, अदब सीखने के लिए, तहजीब सीखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने हमारी सोसाइटी में प्ले किया है।
अच्छा, और उसी सवाल को आपने थोड़ा सा पहले जवाब में भी कहा लेकिन मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा और तफसील से बात हो। तवायफों और सेक्स वर्कर्स में क्या अंतर होता था उस दौर में?
देखिए, सेक्स वर्कर्स जो है वो बेसिकली लो ग्रेड लोग होती थी जो, और लो स्किल्ड, अगर वो मतलब डांस भी अगर कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, तो लो क्लास है वो, मतलब वो रिफाइंड नहीं है। जबकि जो तवायफ थी ये लोग ट्रेन होते थे अच्छी तरह से और इनका एक पूरा सिस्टम, प्रॉपर नंगा सिस्टम होता था। जबकि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं ये बेसिकली अधिकतर हैराज्ड लोग होते थे, जो एक गरीब उसमें छोटे छोटे कमरों में रहना, इस तरह का उनका माहौल रहता था, और कई बार ज़बरदस्ती या वो मजबूरी में इस प्रोफेशन को अपना लेती थी। तवायफों के साथ ऐसा नहीं था, उनमें कोई ऐसे जोर जबरदस्ती वाला ही बात नहीं थी, लोग अपनी विलिंगनेस से उसमें, अपने खुद अपनी इच्छा से वो उस प्रोफेशन में रहती थी। जैसे माँ बेटी को चाहती थी कि वो तवायफ बने, और क्योंकि जो तवायफों का एक जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो कि तवायफों में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जो प्रॉपर्टी है वो उसकी बेटी को मिलती थी, ना कि बेटे को।
अच्छा, ये वहाँ पर हेरिडिटरी रूल था?
हाँ, ये इनहेरिटेंस का रूल था केवल तवायफों के लिए। वैसे ये तो जो हिंदुओं में अलाउ लागू होता था वो हिंदू मैरिज एक्ट वो तो बाद में आया, मतलब हिंदू जो लॉ है वो, और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ। लेकिन जो तवायफें थी चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जाएगी उनकी बेटियों को, तो इसलिए वो खुद भी चाहती थी कि जो हमारी बेटियाँ हैं वो तवायफ बने, ये कारण था। लेकिन जब बाद में जब सिचुएशन जब बदली, जब उनका डिग्रेडेशन हुआ, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, तो उसके बाद में वो जो तवायफ थी वो नहीं चाहती थी कि उनकी जो बेटे हैं, क्योंकि उनकी इनकम भी बहुत कम हो गई थी अंग्रेज़ों के जो जो आफ्टर स्टीमशिप पीरियड।
तो इस पीरियड का मतलब क्या हुआ?
स्टीमशिप का मतलब ये था कि 18वीं शताब्दी के शुरू तक, सॉरी 19वीं शताब्दी के शुरू तक से 1820 तक या 1825 तक जो भाप वाले इंजन के जहाज नहीं आए थे, पानी के जहाज, तो उससे पहले क्या होता था, इंग्लैंड से यहाँ तक आने में करीब 28 दिन लगते थे। तो ये कारण था कि जो अंग्रेज लोग थे अपने जो परिवार थे उनको लेके नहीं आते थे। लेकिन जब ये स्टीमशिप आ गए तो उसके बाद में जो एक चेंज आया वो ये कि अब थोड़ी जो यात्रा सुगम हो गई, तो सुगम होने से वो अपने परिवारों को यहाँ पे लाने लगे। जब परिवार आ गए तो उन्होंने जो उनका जो मनोरंजन के जो तरीके थे यूरोप में, उनको उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया, जैसे अपनी चर्चिज़ बना ली, क्लब्स बना लिए, इस तरह की चीज़ें। तो उससे क्या होगा कि उससे पहले जब तक स्टीमशिप नहीं थे तो उससे पहले वो तवायफों के पास जाते थे मनोरंजन के लिए, लेकिन अब उनके पास अपने
ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव मौजूद थे,
जो जिसके वो मतलब जिनको आदत थी उनको, तो वो उन चीज़ों को जो क्लब्स में जाते थे क्योंकि वहाँ पे उनके डांस वगैरह होते हैं, तो वो सब था उनका। तो जैसे तवायफ में वो खुद डांस नहीं कर सकते थे, केवल तवायफ डांस करती थी या गाती थी। अब ये क्लब्स में है वो, उनको आदत है कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कल्चर में फ़र्क है। तो इसलिए अब उन्होंने जो इस पर तवायफों पर ध्यान देना कम कर दिया, वो कम भी कर दिया, साथ साथ अब ये हुआ कि क्योंकि नवाब पहले ख़त्म हो गए थे, जो ज़मींदार थे वो एक तरह से वो भी परेशान थे, क्योंकि उस समय जो आपके रेवेन्यू लॉज हैं वो बदल रहे थे। रेवेन्यू लॉज मतलब जो किसान है वो करीब करीब 50% अपना प्रोड्यूस दे रहा था, और वो कई बार वो जो फिक्स था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में वो फिक्स था कि उसको
इतनी ज़मीन है तो आपको इतना देना है,
इतना ज़रूर देना है। अब वो चाहे सूखा पड़े, अकाल पड़े, या कुछ और समस्या हो, मतलब पशु खा जाए, आग लग जाए, उनको उतना देना ही देना है। तो किसानों की हालत ख़राब, तो ज़मींदार की हालत ख़राब, तो उससे क्या हो गया, डिसोबीडियंस रेविलियन शुरू हो गया एक तरह से। वो किसान लोग ज़मींदार के खिलाफ़ कर रहे हैं, ज़मींदार अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़े हो रहे हैं। तो वो एक जो समाज में पूरे में डिससेटिस्फेक्शन फैल गया। एक और कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोस्टिट्यूट्स क्यों बन रही थी लोग। तो जो ये देखिए, वो यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे अंग्रेज, और बना हुआ माल लेके आते थे मशीन का, जो सस्ता था और अच्छी क्वालिटी का था, तो लोग उसको ख़रीदते थे। जो यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे वो हाथ से काम करते थे, हाथ से कपड़ा बना रहा है, कुर्ता बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब वो मशीन मेड गुड्स ने उनका जो प्रोफेशन ख़त्म कर दिया, किसान ख़त्म हो गए, हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे वो सब ख़त्म हो गए, जो बड़ाइयों के पास काम नहीं रहा, कपड़े वालों के का जो कारीगर थे उनके पास काम नहीं रहा। तो अब वो जब गरीबी उनको घेरने लगी तो उनकी महिलाओं के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं,
तो वो फिर उस तरह,
हाँ, तो इसमें एक डिग्रेडेशन सोसाइटी में भी हुआ उस समय। तो इसके बारे में तो प्रेमचंद ने भी लिखा है, इसमें
सेवा सदन उपन्यास की बात आप कर रहे हैं।
हाँ।
जी, बहुत सारी फिल्में भी उस तरह बनी।
हाँ, बिल्कुल।
कमाल अमरोही साहब की पाकीज़ा है, उमराव जान है, है ना, और एक जो गाना है वो भी जो मुगले आजम फिल्म में आता है, वो है पनघट वाला, वो भी उसी तर्ज पर था। बहरहाल, मैं थोड़ा और एक सवाल पर, हम लोग ने तवायफों के बारे में, जैसे हमने फिल्मों का भी उदाहरण दिया, कुछ उपन्यासों की बात हुई, विक्रम सेठ का उपन्यास है सटल वाला, लेकिन तवायफें तैयार कैसे होती थी, मतलब उनके इत्र कहाँ से आते थे, उनके कपड़े कहाँ से बनते थे, थोड़ा आप तवायफों की ज़िंदगी में अगर आप हमें दाखिल कर सकें तो।
देखिए, जो इनका पूरा सेटअप था उसमें वो एक ट्रेडिशनल मुग़ल तरीके से अपने कोठे को सजाया जाता था, तो उसमें जो तवायफें भी थी उनके जो कपड़े हैं, ज्वेलरी है, ये सब ट्रेडिशनल तरीके से ही बनती थी। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो लोकल जो सुनार होते थे उनसे उनकी ज्वेलरी आ रही है, जो कपड़े हैं वो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन कई बार जो
बाहर मतलब अलग देशों से, पर्शिया?
नहीं नहीं, पर्शियन से नहीं, मतलब लोकल जो बाहर के जो आपके टेलर्स वगैरह हैं उनसे आ रहा है।
अच्छा।
लेकिन जो कुछ अच्छी जो तवायफ़ थी जो पैसे वाली थी वो अपने पास वो टेलर्स खुद एम्प्लॉय कर लेती थी, तो ऐसे ही उनके पास ना केवल ये बल्कि म्यूजिशियंस तक एम्प्लॉय कर लेती थी फुल टाइम, कि वो म्यूजिशियन उनके पास ही रहते थे, उनका काम ही था ट्रेनिंग देना। तो ऐसे ही टेलर्स का काम था नए नए डिजाइन के, और इसलिए कई बार क्या होता था जो फैशन है वो इनके कोठे से शुरू होता था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और मतलब वो पहला एक लहंगा, एक स्पेशल टाइप का लहंगा या जो बंधनी है जो भी है, वो कोठे से शुरू हुआ और लोगों ने उसको अपना लिया, मतलब बाहर की महिलाओं ने अपना लिया। तो इस तरह से जो कल्चर है दैट फ्लोड फ्रॉम देयर फ्रॉम द कोठा, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट।
एक कल्चर और था जिसके लिए हुस्नाबाई गांधी से लड़ गई थी एक कल्चर वो भी था जिसमें वो ज़मींदार से कहती हैं कि अपने पैसे अपने पास रखो और अपनी अकड़ के साथ वापस लौट जाओ सीढ़ियों से। हुस्नाबाई के बारे में थोड़ा बताएं, काशी तवायफ सभा बनती है और उसके बाद गांधी से जो बहस है, फिर वो वापस आके कहती है कि नहीं हम पेट्रियट सॉन्ग्स गाएंगे, हम रिलीजियस सॉन्ग गाएंगे, थोड़ा प्लीज़ बताएं हुस्नाबाई के बारे में।
जब हम हुस्नाबाई की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता लगता है कि वो कितने सक्षम लोग थे, मतलब कल्चरली और बाय लिटरेचर। तो साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान था, भारतेंदु हरिचंद खुद उनके पास आते थे डिस्कस करने के लिए। तो और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कोठे होते थे वो अदब तहजीब कि इसके मतलब ट्रेनिंग सेंटर होते थे। तो अब वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गाना नहीं चाहती थी जो इसकी वैल्यू ना समझे, वो केवल हल्के फुल्के गाने नहीं गाते थे। तो इसलिए उन्होंने मतलब जो चाहते थे कि जो हमारी जो ऑडियंस है वो अच्छी क्वालिटी की हो ताकि हमें भी गाने में मज़ा आए। तो ये कारण है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो केवल मतलब उनको देखने आ रहा है या जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है संगीत की, जो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है उसमें कि वो ठप ठप करता सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो उसको पता लग गया कि ये ठप ठप करने वाला बंदा मतलब एक सीरियस ऑडियंस नहीं उसका। तो इसलिए वो कहा कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, आप जाओ, हम तो सीरियस अगर आप हो तब हम आपको वेलकम करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो
उसने अपनी पैसे वाली पोटली दिखाई, बड़ा मज़ेदार किस्सा रहा कि पैसे वाली पोटली दिखाते वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही बहुत मिलेंगे, आप जाइए।
हाँ, तो वो केवल बात पैसे की नहीं थी, जो उनकी जो कल्चर है उसका जो रिफाइनमेंट
खुद मुख्तारी,
हाँ, तो वो उसको उन्होंने होल्ड करके रखा है कि यस, कि हमारी जो ये सेनेट है हम अपने सेनेट को डाउन नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये था। और जैसे गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, तो जो ये पीरियड था जिस समय आर्य समाज और
ब्रह्म समाज
जो दूसरे भी और लोग थे वो लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग एक्चुअली इस बात में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि तवायफ में और वैश्य में क्या फ़र्क है,
सेक्स वर्कर और उसमें क्या,
सेक्स वर्कर और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो वो सभी लोग, इवन अंग्रेज भी और ये जितने समाज सुधारक थे, ये सभी लोग सबको एक ही कैटेगरी में रखे दे रहे हैं। तो ये बात तो इनको तवायफों को बटने चला है फील होगी कि भाई आप हमारे मतलब आप हमारे इस बारे में सही तरीके से जानते नहीं, आप हमें बदनाम कर रहे हो। तो ये भी कारण था, और ये सब इन समाज सुधार के कारण इनकी बदनामी हो रही थी। तो लोग क्या था, अब जो समाज में जो लोग थे, पहले तो इनके पास लोग अपने बच्चों को भेजते थे, अब वो बच्चे भेजना बंद कर रहे थे, लोग जो पत्नियां थी वो नहीं चाहती थी कि उनके पति वहाँ पे जाएं, कोठों पे जाएं, तो क्योंकि एक बैड इमेज बन गई, बुरी इमेज बन गई। तो इसीलिए जो ये सब कारण था, तो ये सब अंदर से परेशान थी, और इसीलिए अब वो अपना गुस्सा वो निकालना चाहती हैं। तो बहुत सारी जितनी तवायफ थी इन्होंने अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसका मेन कारण यही था कि इनको पता है कि इनके कारण हमारा जो प्रोफेशन है वो तबाह हो गया।
लेकिन गांधी से कैसे बहस हुई?
तो गांधी जी का क्या था कि गांधी जी चाहते थे कि ये लोग मतलब ये छोड़कर, अपना पेशा छोड़कर ये लोग मतलब चरखा बुने, उससे अपनी वो करें। अब होता क्या था कि जो तवायफ थी उसकी इनकम ठीक थी उस समय, सब वो 2 या 3 रुपए वो रोज के कमा रही थी।
एक टाइम पर लखनऊ में सबसे टैक्स पेयर्स हुआ करती थी जद्दन भाई, ये नरगिस की जो माँ है संजय दत्त की नानी।
बिल्कुल बिल्कुल, ये कई जगह सच है, बनारस में भी, लखनऊ में भी, इवन जयपुर में भी।
अच्छा,
और लाहौर तो था, लाहौर में जैसा उसमें दिखाया है वैसा एग्जैक्टली था नहीं, मतलब इतने विशाल वगैरह नहीं थे वो कोठे, लेकिन अच्छे थे। तो खैर, तो जो अब इनको जो टीस थी वो इसी बात की टीस थी कि महात्मा गांधी भी खुद ऐसा कर रहे हैं, तो ये गई इसीलिए कि अब महात्मा गांधी उनसे क्या आशा करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, अगर वो चरखा अपना लेंगी तो उसमें इतनी इनकम नहीं होने वाली।
सही बात।
तो गांधी जी ने उनको कहा कि आप मतलब नेशनलिस्ट गाने गाओ, धार्मिक गाने गाओ, तो उनका यही सवाल था कि हमारे मुख से अगर हम गाएं नेशनलिस्ट सॉन्ग तो हमारे मुँह से सुनेगा कौन,
या धार्मिक गाएं तो कौन सुनेगा,
कौन सुनेगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो अब वो गांधी जी कहने पर उन्होंने तवायफ, काशी तवायफ सभा तो उन्होंने बना दी, लेकिन वो उसकी काफ़ी सारे उसमें डिस्कशन मैंने दिया है। तो वो समस्या यही थी कि सभी तवायफों के मन में यही है कि हमारी रोजी रोटी इससे चल नहीं पाएगी।
और लगभग क्रंदन करते हुए वह कहती हैं, जो आपने किस्सा इसमें मेंशन भी किया है, कि आपने बापू, आपने हम में और उनमें कोई अंतर ही नहीं समझा क्या, हमारे बारे में सुनते तो सही। फिर गौहरजान का जिक्र आता है आपकी किताब में से ही, जरा वो किस्सा बताएं कि वो आधी रकम उनको दे देते हैं।
तो आगे जो गौहरजान का था, उन गांधी जी को उन्होंने कहा था कि हम मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन शर्त केवल यही है, हम आपके लिए प्रोग्राम कर देंगे, जितना पैसा होगा वो सब आपका होगा, हम कुछ नहीं लेंगे
उसमें। ये फंडिंग चल रही थी,
फंडिंग, हाँ अच्छा। फंडिंग के लिए प्रोग्राम था। तो लेकिन हमारी शर्त यह है कि आप आएंगे। अच्छा। तो वो खुद नहीं आए, अपनी जगह किसी और को भेजा,
मौलाना शौकत अली साहब।
हाँ, तो जब किसी और को भेजा तो उन्होंने ये कहा गौरव ने कि आपने अपना आधा जो प्रॉमिस, अपना आधा वायदा पूरा किया है, तो हम भी अपना आधा वादा करेंगे। तो उन्होंने जितने पैसे एकत्र हुए थे उसके आधे पैसे उन्होंने भेज दिए महात्मा गांधी को। तो वो था। अब उनके कांग्रेस के साथ एक समस्या और भी थी, जैसे बैरिसल में जो अभी बांग्लादेश में, वहाँ पे क्या था कि जो तवायफ थी वो कांग्रेस से जुड़ गई, और वो चाह रही थी कि हमें कांग्रेस के अंदर पद मिले, लेकिन वो गांधी जी ने उसके लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि पवित्र नहीं है उनके, मतलब हम किसी ऐसे व्यक्ति को मतलब पद नहीं दे सकते जिनके हाथ और दिल प्योर ना हो, पवित्र ना हो, ये मतलब शब्द थे। और उन्होंने फॉलन वूमन एक जगह प्रयोग किया, फॉलन वूमन का मतलब गिरे हुए, गिरी हुई महिलाएं। तो इस तरह से उनका जो नज़रिया था वो एक बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि समाज सुधार वो चाहते थे, वो चाहते थे कि इनका रिसेटलमेंट हो जाए, लेकिन उनको एक रोजी रोटी का जरिया नहीं दे रहे थे, वो उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं था।
आपने जिस आखिरी लाइन से आपकी किताब ख़त्म होती है, और इससे पहले मैं आपकी संपादक से बात कर रहा था कि औरतों की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो गांधी का दौर रहा हो, उससे पहले औरंगजेब का दौर रहा हो, अंग्रेज़ों का दौर रहा हो, उसके बाद वाला, या आज की ही 2024 से जो हम बैठकर बात कर रहे हैं। बहरहाल, आपने जो बात जहां पर छोड़ी मैं उसके नेक्स्ट चैप्टर पर ही जा रहा हूं। धर्मन बीबी का जिक्र हुआ, जैसे आपने कहा कि गांधी उनको ये तो चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो उनको लीडरशिप नहीं देना चाहते। ठीक उसी तरह लोग बाबू कुंवर सिंह को तो बड़े सम्मान से याद करते हैं, आरा के लोग, जैसे धर्मन मस्जिद भी है, लेकिन धर्मन बीवी का नाम आते ही उनके पास बहुत तथ्य नहीं होते, बहुत सूचनाएं नहीं होती, और जो सूचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा फोकलोर्स में बहुत भ्रष्ट होकर के सामने आ पाती हैं। धर्मन बीवी का किस्सा बताइए, पहले प्रेम हुआ, उसी शिवरात्रि में बाबू कुंवर सिंह मिले, 70 बरस के एक शख्स से वो कहती हैं कि मुझे शादी करनी है, बच्चे होते हैं, पति की सेवा शुश्रूषा में पति को बचाने के लिए अब नवजात शिशु को छोड़ जाती हैं, सारे किस्से बताइए।
देखिए, मैं तो जो वीर कुंवर सिंह थे इनके 8वीं जनरेशन के जो पौत्र हैं उनसे मैं मिला।
थोड़ा हमारी बाहर की ऑडियंस जो है, जो राजस्थान में बाकी और जगह बैठी है, थोड़ा गुजरात में, उनके बारे, उनको थोड़ा सा एक बार एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दे दें, बाबू कुंवर सिंह कौन थे, इनका क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा।
जो 1857 की अगर तीन सबसे बड़े वीर जो अगर कहेंगे भारत में जो हुए, जिसकी प्रशंसा अंग्रेजों ने की है, तो वीर कुंवर सिंह उसमें से एक थे, तात्या टोपे एक थे, और एक क्या कहते हैं फैजाबाद के थे, एक
फैजाबाद
अली थे। तो ये तीन सबसे बड़े वीर थे। तो वीर कुंवर सिंह वो थे, वीर कुंवर सिंह वो थे जिन्होंने अपनी सेना बना के अंग्रेजों को कई बार हराया।
और आरा से बिलोंग करते थे
वो, जगदीशपुर से,
जगदीशपुर
इनके मतलब जागीर थी इनकी, और वहाँ से इन्होंने सबसे पहला जो हमला किया था वो आरा में किया था, अंग्रेजों को हराया, लेकिन बाद में अंग्रेजों से हार गए, फिर जगदीशपुर आ गए, जगदीशपुर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। तो उसके बाद सेना लेके ये पूरा मतलब बहुत बड़ा एरिया, रेवा से लेकर अवध होते हुए, कानपुर होते हुए, और ये वापस जगदीशपुर गए और उसको आज़ाद करा लिया। और उनकी एक ख़ास बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब ये नाव, ये आखिरी आदमी था, अपनी सेना को पूरी गंगा पार भेज दिया था जगदीशपुर वापस जाने के लिए, और ये सबसे आखिरी आदमी थे जो आखिरी नाव में थे, 4-5 लोग और थे। तो उस समय एक तोप का गोला, अंग्रेज पीछे आ गए थे, तो तोप का गोला इनके हाथ पे लगा, हाथ घायल हो गया, हाथ घायल हो गया तो उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों के गोली से नहीं मरना चाहता। तो उन्होंने क्या किया, बाएं हाथ से अपने डैगर कटार निकाली और हाथ अपना काट के खुद ही काटा है,
क्योंकि अस्सी
वर्ष के, हाँ 80 वर्ष का व्यक्ति है वो, और काट के और वो गंगा माँ को चला दिया। तो इतने वीर थे। और उसके बाद में जाके उन्होंने जगदीशपुर की लड़ाई जीती और उसके 3 दिन बाद लेकिन वो उनकी मृत्यु हो गई।
कटे हाथ से लड़ाई करी 3 दिन तक और फिर जाके मृत्यु,
हाँ, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत उनकी थकान हो चुकी थी इतने दिन, क्योंकि पिछले करीब 3 महीने से वो यात्रा कर रहे थे, लगातार लड़ाई कर रहे थे, लगातार सब कुछ चल रहा था। उसी बीच धर्मन बीवी की भी डेथ हुई थी, उनके पोते की भी डेथ हुई थी।
उसी जिक्र को शुरू कर दीजिए जरा, तो कैसे आएंगी?
तो धर्मन बीवी इस तरह था कि वो मेले में थी तो कुछ छेड़छाड़ का मसला था, तो छेड़छाड़ का मसला था तो एक जो युवक था वो भी वहाँ पे था। वो युवक और ये दोनों उन जो छेड़छाड़ कर रहे थे उनको उन्होंने कंफर्ट किया और उनको मारा इन दोनों ने ही, क्योंकि ये भी खूब लंबी चौड़ी और ताकतवर थी। और जो इनकी ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, तवाक की ट्रेनिंग, कि अगर कोई आपको छेड़े तो आपको क्या करना है या किसी को पटकना कैसे है, वो सब इनको सिखाया, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो। तो वो सब इन्होंने यूज किया और 8 लड़कों को इन्होंने मार के भगा दिया। अब वो दोनों आपस में प्रेम सा हो गया, लेकिन जो इसकी जो मौसी है वो नहीं चाहती कि जो उसका पैटर्न है, जो साहिब जिसे कहेंगे,
तो जहूरन भाई,
तो वो नहीं चाहती कि ये मतलब किसी एक मतलब ऐसे आदमी के साथ जुड़े जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वीर कुंवर सिंह के साथ जुड़े, ये नहीं चाहती कि वो उस समय 70 साल के हैं, तो अगर 50-60 साल के हैं तो कि अगर ये मैं इनके साथ जुड़ जाऊँ तो मतलब कुछ मिलना नहीं है, तो वो उनका ये विचार है। तो अब वो इस तरह से वो रिसिस्ट कर रही है। इतने में क्या होता है, जहरुन भाई को एक धोखेबाज आके उसको जहर देके और प्रॉपर्टी लेके भाग जाता है। अब उसकी तलाश में वो वीर कुंवर सिंह के पास जाती है, क्योंकि ज़मींदार है और इनकी चलती है, अंग्रेज भी इनकी बात मानते हैं। तो अब वो हालांकि वो व्यक्ति तो नहीं मिला जो मतलब जो
जिसने मारा था
वो नहीं मिला, तो लेकिन इनमें आप ये को पता चल जाता है कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत ही नोबल है, इसमें मतलब कोई भी इसके मन में बुरी भावना नहीं है। हालांकि उसने प्रपोज किया कि धर्मन बीवी को मेरी मतलब बन जाओ, मेरी पैटर्नशिप में आ जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। तो अब वो उसको विश्वास जम गया, तो वो इस तरह से वो उनकी मतलब तवायब बन गई। अब वो तवायब का मतलब ये होता है कि देखो उनकी लिबर्टी कितनी देते हैं, एक कि जब वो धर्मन बीवी कह रही है कि मेरे को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं क्योंकि मैं तवायब हूँ, तो उनके लिए उन्होंने 2 मस्जिद बनाई, एक मस्जिद आरा में और एक दूसरी जगदीशपुर में। एक वो देखिए आपस में जो सामुदायिक भावनाएं कितनी स्ट्रांग है कि वो मुस्लिम है वो हिंदू है, लेकिन वो उसकी भावनाओं की पूरी कदर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा अब वो जो धर्मन बीवी है वो माँ बनना चाहती है, अब वो माँ बनना चाहती है तो वो कुछ भी कह लीजिए नहीं बन पा रही है। अब नहीं बन पा रही है तो उसमें समय लग रहा है, तो अब उस समय जो वीर कुंवर सिंह हैं ये लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, 1857 बेसिकली 1857 उस समय नहीं कह सकते, लेकिन मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ उठना चाहते हैं। और ये 1946 में भी इन्होंने जो पंजाब में जो लड़ाई हुई थी, मतलब जो महाराजा जो रंजीत सिंह है जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में सिखों की हालत ख़राब होने लगी पंजाब में, तो ये जब लड़ाइयाँ चल रही थी वो सिख एंड इंग्लिश वॉर, तो उसमें वीर कुंवर सिंह चाहते थे कि मैं एक फ़ौज भेजूं सिखों की सपोर्ट के लिए, तो लेकिन वो राज खुल गया, उन्होंने सब कुछ तैयार हो गया था लेकिन वो राज खुल गया तो वो हो नहीं पाया, मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। अब वो
क्या कहते हैं, चाहती हैं,
हाँ, तो वो 46 की बात थी, अब 57-50 56 आ गया था, तो अब वो धर्मन बीवी चाहती है मैं माँ बनूँ। उस समय तक जो इनहेरिटेंस लॉ है वो बड़ा सख्त था, जो क्योंकि इनको अंग्रेज़ों ने जो लॉ बना के जो सेक्स वर्कर्स हैं और तवायफ हैं इनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया था, डांस गर्ल्स में, अब वो एक ही कैटेगरी में डाल दिया तो उन पर कई तरह के प्रतिबंध थे। एक तो ये है कि उनका पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता था, उस मेडिकल एग्जामिनेशन में वो हर तरह से मतलब वो ग्रोपिंग होती थी अच्छी तरह से, तो वो सब था नेगेटिव, जिसके बारे में तवायफ मतलब बहुत बुरा मानती थी,
बहुत अपमानजनक तरीके से
और सभी को एक ही कैटेगरी में कहते थे, एक ही कैटेगरी में मानते थे कि ये सब तो सब एक ही काम करते हैं, चाहे गाती भी हैं गाती होंगी लेकिन काम इनका यही है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी, और जो इनका एडॉप्शन का रूल था वो ये पहले ही अडॉप्ट कर सकती थी क्योंकि तवायब तो वो सेक्स वर्कर नहीं थी, तो इनका अडॉप्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने लॉ बना दिया कि अगर ये अडॉप्ट कर सकती हैं तो केवल अपने क्लोज रिलेटिव से कर सकती हैं और किसी से नहीं कर सकती, बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती जिसके नहीं है बच्चा। नॉर्मली अधिकतर जो तवायब थे उनके बच्चे नहीं होते थे क्योंकि सब प्रोडक्शन वगैरह लेती थी। तो अब वो चाहती है माँ बनना, तो इसलिए फिर उसने कहा कि ठीक है मेरे पैटर्न से नहीं तो मैं गोद ले लेती हूँ। अब उसमें भी थोड़ी समस्या हुई, अब वो बच्चा हुआ थोड़ा बीमार हो गया और पुलिस वाला भी नॉक करने आ गया, तो इस तरह से वो बड़ी मज़ेदार घटना है वो। और
बता दीजिए थोड़ा सा,
तो अब वो मतलब बच्चा ना बीमार हो गया है
तो जो अडॉप्ट लिया है,
जो अडॉप्ट किया है, अब वो अडॉप्ट किया है तभी वो पुलिस वाला भी नॉक करने आ गया, तो वो ये समझती है कि ये पुलिस वाला नॉक करने आया इसकी वजह से इसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही है, तो इसलिए वो चाहती पुलिस वाले को बुरा कह रही है वो। और उस वो उसकी सब तरह की दवाइयाँ होती हैं, अब वो अंग्रेज़ के पास नहीं जाती क्योंकि बच्चा उसने इलीगली अडॉप्ट किया है, इलीगली अडॉप्ट किया तो जो सरकारी डॉक्टर है वो अंग्रेज़ है, उसके बाद
ईमानदारी नहीं हो पाएगी,
हाँ तो बल्कि वो खुद फंस जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए वो हकीम वगैरह वो सब कुछ ट्राई कर रही है, उसके नज़र उतार रही है, वो सब काम कर रही है उसकी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। और वो खुद ही थोड़ी बीमार हो जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ होती है, जो हकीम है वो उसको भी चेक करते हैं तो कहते हैं वो सब खुशखबरी देते हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, कि आप माँ बनने वाले हो। तो वो मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चीज़ साथ साथ हो रही है, बिल्कुल एक बड़ा मतलब मेरे लिए भी बड़ा सेंटिमेंटल मोमेंट था वो कि मैं जान के कि मैं क्या सुन रहा हूँ। तो उसके बाद में जुड़वा बेटियाँ होती हैं और उस समय आरा में लड़ाई हो रही है, वीर कुंवर सिंह फ्रंट पे है, तो उन्होंने जो आरा हाउस है उसको घेर रखा है, उसके अंदर अंग्रेज फंसे हुए हैं, उस जो अंग्रेज सेना उसके अंदर फंसी हुई है और ये उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, और उनकी सपोर्ट के लिए दूसरी आर्मी आई है, उसको उन्होंने हरा दिया, तो वो सब चल रहा है। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये हार गए, तो वीर कुंवर सिंह हारे तो ये आप जगदीशपुर चले गए। अब धर्मन बीबी है वो अपने पैटर्न के साथ रहना चाहती है, अब वो जिन बच्चों को वो इतना चाह रही थी कि मेरे को मिल जाए कि मेरी गोद हरी हो जाए, अब वही बच्चे उसको लग रहे हैं कि रास्ते की रुकावट है कि इसके कारण मैं अपने पैटर्न के पास नहीं जा पा रही, उसका साथ नहीं दे पा रही। तो देखिए कितने एक वो भावनात्मक बॉन्ड है कि
पहले ये मांगा था और अब इसको छोड़ा नहीं जा रहा।
हाँ तो इस तरह से, और तो इसलिए वो पता करती है कि क्या हो रहा है, तो पता करता है कि वो तो उसे ये जगदीशपुर चले गए तो जगदीशपुर तो कोई हरा नहीं पाएगा क्योंकि जगदीशपुर में इनका बहुत बड़ा किला था। और किले में एक खास बात थी कि वो कि मतलब आज से करीब 10 साल पहले इनको लगा था कि जो ये बड़ी तोपें आ गई तो जो मेरा किला इतना मजबूत नहीं है, नॉर्मल सा किला था, एक मतलब कुछ बिल्डिंग उसके अंदर थी बाकी सब मतलब कच्चा टाइप था, कि अगर तोपें आ गई तो चार गोलों से सारा तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जाए कि अंदर कैनन्स जो तोपे हैं बड़ी वो आ ही ना पाए, तो उन्होंने क्या किया मजबूत पौधे लगाए बड़े वो और पास पास लगाए बिल्कुल, जिससे कि एक सीमा सी बन जाए ऐसी कि मतलब पूरी बाउंड्री बन जाए। और सब बड़े बड़े विशाल पेड़ थे, जैसे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, जामुन के पेड़ जो विशाल हो जाते हैं बिल्कुल, तने भी मोटे होते हैं
जिसके बीच में कट भी ना सके।
हाँ तो इस तरह से उन्होंने और पूरे 1 किलोमीटर रेडियस में ऐसे चारों तरफ किले के चारों तरफ लगा दी। आज उसमें से कुछ पेड़ आज भी मौजूद हैं,
उस जमाने में लगाए गए।
हाँ आज भी मौजूद है वो, तो मैं देख के आया उसमें लोग वो लाल धागा बांधते हैं आज भी कि वीरों को याद करने के लिए, तो क्योंकि उस पेड़ पे अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को फांसी पे चढ़ाया था। तो इस तरह से मतलब वो ने उसमें से गन्स नहीं जा सकती थी अंदर,
तो
और अंदर हाँ अंदर इनके पास क्योंकि इनके पास बंदूकें कम थी, मस्केट्स वगैरह बहुत ना के बराबर थी, तो इन्होंने अपना तोपखाना भी बनाया उसमें, फाउंड इसमें फ़ोटो दी होगी मैंने, तो उसमें वो छोटी जो गन उथली गन उसे कहते हैं तो शैलो गन्स, तो शैलो गन्स का क्या है कि उसमें पत्थर के गोले भी चल जाते हैं, लोहे के चलते हैं पत्थर के भी चल जाते हैं। तो अब वो धर्मन बीवी को ये लग रहा है कि जगदीशपुर तो बिल्कुल शानदार किले बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई घुस नहीं पाएगा क्योंकि सेना भी ज़्यादा है, सारे लोग भी इनका सम्मान करते हैं और ट्रेनिंग भी है सबकी और सब, लेकिन वो हार जाते हैं। हार जाते हैं तो धर्मेंद्र बीवी को फिर पता लगता है कि अरे ये हार गए तो परेशान होती है, तो फिर पता लगता है कि वो आगे चले गए, देवी का मंदिर है का नाम मेरे को ध्यान करना पड़ेगा, वहाँ चले गए, वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर। तो ये तैयार होती है कि मैं जाऊँगी वहाँ पर, तो रोका जाता है कि रुक जाओ, नहीं। वो अपने दोनों बेटियों को एक और तवायफ के सपोर्ट करती है और खुद तैयार। अभी देखिए उनका उनका जन्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी उसको आराम की ज़रूरत है फिजिकली। महिला जब मतलब जब उसका बच्चा होता है तो उसको काफ़ी समय तक उसका बॉडी मतलब बहुत सारे चेंज आते हैं, वो उसको आराम की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय खुराक की ज़रूरत है। लेकिन वो महिला पुरुष के कपड़े सिलवा कर तुरंत और वो घोड़े पे सवार होकर जाती है, वो कैमूर एरिया है वो जी। तो कैमूर जाती है, वो वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे लगता है कि वो रेवा की तरफ चले गए, वो 400 किलोमीटर रेवा की तरफ जाती है। देखिए अकेली है और वो लेकिन अपने पैटर्न के पास जाना चाह रही है वो, और वो मर्द के कपड़े में है और पहुँचती है इनके पास, और फिर इस तरह से अब वो तो लड़ाई लड़ते हुए जा रहे हैं। वो तो हर जगह जो अंग्रेज हैं या उनके जो पिछलग्गू हैं उनको हराते हुए जा रहे हैं, तो इस तरह से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो जब बांदा आए तो बांदा में अपने वीर कुंवर सिंह को बचाने के लिए इसने तोप का गोला अपने सिर पे ले लिया, अपने माथे उस पे ले लिया,
खड़ी होगी एकदम।
हाँ, वो घोड़े पे थे तो वो पहली बार ही मतलब इनको वॉर में लेके गए थे, बैटल में लेके गए थे। तो वो क्योंकि इन पर इनाम था, वीर कुंवर सिंह पर बहुत अच्छा इनाम था, 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय। तो वो जो जमींदार था उसने देख लिया था, उसने कहा अच्छा ये अगर ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो वो तोप का गोला जो मारा तो इनको, क्योंकि वैसे पता नहीं था कि यहाँ पे तोपें भी लगी हुई हैं, तो ये तो ऐसे इसलिए घोड़े पे मतलब चार्ज कर रहे थे। तो वो तवा इसने देख लिया, धर्मन वो साथ में ही थी, तो धर्मन देख लिया कि अरे ये तो तोप तैयार हो रही है। तो वीर कुंवर सिंह को मतलब कवर कर लिया अपनी बॉडी से और वो तोप का गोला इनको ही आके लगा, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई।
अच्छा, तो जब आप ये कह जैसे जब धर्मन निकलती हैं, धर्मन बीबी की अपने पति को बचाएंगी या देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान देंगी, उसी तरह क्या ये बात अजीज़न को नहीं पता थी जब वो जाती हैं और उसके बाद वो एक बैटल ग्राउंड तरीके शमसुद्दीन से उनका प्रेम संबंध है, सीक्रेट लेती हैं, अवध का पूरा इलाका पूरा आज उनको वहाँ पर फोकलोर्स में गाया जाता है, उनके बारे में थोड़ा बताइए।
अजीज़न भाई का एक मतलब आप ये जानेंगी, अगर जो तवायफ जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया उसमें अजीज़न भाई को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, उसका कारण है वो आज भी वहाँ के फोकलोर में ज़िंदा है, लोग गीत भी गाते हैं, लोग वैसे भी जानते हैं आपको। आप किसी भी मतलब पार्क में जाके लोग बैठे हुए हैं आराम से बात करें कि अजीज़न भाई, तो वो बताएंगे अजीज़न भाई के बारे में, और थोड़ा सा वेरिएशन होगा, वो होता है लीजेंड्स जो बन जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन होता है, लेकिन वो आपको थोड़ा सही बात निकालने के लिए थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा, वो होता है। लेकिन वो आपको उनकी जो जनरल जो लाइफ स्टाइल है, वो जो रहने का ढंग है, किस तरह से काम किया, किस तरह से उसने बलिदान दिया, क्योंकि इसकी वो केवल अकेली नहीं गई, उसकी जो मस्तानी टोली थी, वो उसके जो ग्रुप था तवायफों का और आसपास की कुछ तवायफों और भी उससे जुड़ गई थी, तो वो जा रही है, तो वो कई तरह से काम किया। युद्ध में भाग लेने से पहले तो वो उनका मेन रोल जो था वो था पैसे देना और सूचना देना, और जब इन्होंने खुद ही जब यूनिफॉर्म पहन ली उसके बाद में ये और ये पूरी मसानी टोली हर तरह काम करती थी, मतलब हथियार सप्लाई करती थी, उनका मनोरंजन करती थी सिपाहियों का, उनको भोजन बना के देती थी, अपने हाथों से परोसती थी, वो सब काम करती थी। तो इससे उनका उत्साह, जो सिपाही लड़ रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वो सब काम करती थी। तो इसलिए अजीज़न भाई का, और देखिए उनको फांसी दी गई तो
और मैं जब आपकी किताब पढ़ रहा था तो जो छवि मजबूत तौर पर उभर कर आती है कि घोड़े पर आर्मी के पूरे मेडल लगाए हुए डेकोरेटेड रूप से बैठी हुई अजीज़न भाई, बहुत सम्मान और बहुत श्रद्धा की एक पूरी इमेज बनती है। फांसी से पहले जरा उनकी जंग की कहानी भी सुना दीजिएगा।
तो देखिए जंग में तो मैंने रोल बता दिया कि जो शमशुद्दीन थे इन्होंने खुद ही इनको सिखाया था शूटिंग कैसे करते हैं।
कौन थे?
जो लवर थे इनके, तो इन्होंने खुद ही इनको
नहीं, मतलब मैं लवर थे लेकिन वो आर्मी पोस्टर थे, मतलब
ये सिपाही थे वो, जो इनकी जो बंगाल आर्मी थी उसके सिपाही थे वो, तो लेकिन वो रेबल थे अंदर से कि वो क्रांति करना चाह रहे थे, और इन दोनों ने योजना बनाई थी कि हम शादी तब करेंगे जब देश आज़ाद हो जाएगा, तो ये इनकी थी। लेकिन अब वो आज़ादी तो मिली नहीं और वो बलिदान हो गए, अब बलिदान हो गए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उनकी जो सपना था इसको पूरा करने का पूरा भरसक प्रयत्न करूँगी। तो वो भरसक प्रयत्न करने में वो खुद यूनिफॉर्म पहन के आ गई, और इस बात का विवरण बहुत लोगों ने दिया है। उस समय कुछ लोगों ने डायरियाँ लिखी हैं, उसमें उसका विवरण मिलता है, कुछ अंग्रेज़ों ने भी लिखा है उसके बारे में। और जब वो हैवलक ने पूछा कि तुमने विद्रोह क्यों किया, राजा के ख़िलाफ़ विद्रोह किया है अगेंस्ट द क्राउन, तो कह रही हैं साफ बहादुरी से कि आप लोग हो जिन्होंने हमारी चीज़ को कब्जाया है, आप लोग हो जिन्होंने धोखा दिया है, अभी तक आप मुग़ल जो राजा था, जो बादशाह है, उसकी उसके नाम पे आप अपने सब मतलब लेटर्स लिखते थे, सब सब काम करते थे, और अभी आप अपने राजा को मुग़ल बादशाह पे आप थोपने की कोशिश कर रहे हो। तो आप हो इन्वेडर्स, हो आप इम्पीरियलिस्ट हो, आप कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ये लोग कभी भी आपको दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। जो कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत मजबूरी में कि कुछ किसी को पैसे मिल रहे हैं कोई या कोई लाभ मिल रहा है, वैसे लोग हैं। तो जो ये सिपाही भी हैं, मतलब उसने नहीं कहा उस समय, लेकिन वो जो सिपाही भी थे वो भी सिपाही क्यों ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि किसान ख़त्म हो गए हैं, जो कारीगर हैं वो ख़त्म हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना लोगों को, और एम्प्लॉयमेंट का जो एक ही साधन है वो है कंपनी की सेवा करो, और कंपनी की जो सबसे बड़ी सेवा है वो है फौज, फौज में काम करो।
तो शमसुद्दीन से फिर उनकी बातचीत हुई।
तो अब शमसुद्दीन मृत्यु के बाद तो इन्होंने फिर पूरा भाग लिया जितना मतलब पॉसिबल था इनके लिए, लड़ाई में भाग लिया, नाना साहब के साथ भी देखी गई हो।
अच्छा,
तो नाना साहब तो आप जानते हैं, नाना साहब पेशवा, उनका अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिया था, और वो इसीलिए लड़ाई कर रहे थे। वो मेरठ में भी आए, वो दिल्ली में भी आए, आपके जो दिल्ली लाल किले में मार्किंग है वहाँ पर। तो इस तरह से वो चला उनका, और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और वो हरिद्वार में ही गए थे, हरिद्वार में उनकी भेंट स्वामी दयानंद से हुई थी, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी रिसर्च का परिणाम है ये, और उन पे भी मैंने, उस पर फिल्म भी बन रही है,
और करना है आपको
तो हाँ, वो किताब भी जल्दी आने वाली है, किताब अभी नहीं आई। तो इस तरह से तो वो जो नाना साहब का था बहुत बड़ा रोल था इसमें,
क्योंकि ये इनको बहुत अजीज़न भाई इनको बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
हाँ, वो जो ये तात्या टोपे, रानी झांसी और ये नाना साहब, ये बचपन में एक साथ खेले हैं, एक ही परिसर में रहे हैं, और जो उनका जो महल था जिसको डिस्ट्रॉय किया अंग्रेज़ों ने, उसकी फ़ोटो भी इसमें है किताब में। तो वो आपको इस किताब में तो काफ़ी कुछ मिलेगा, जो मतलब सब कुछ बताया नहीं जा सकता। तो
नहीं, मैं आखिरी बस आपके पास आ रहा हूँ उसमें। जब आप ये कह रहे सब कुछ बताया नहीं जा सकता, तो मुझे याद आया कि सब कुछ पता भी नहीं होता कि कैसे होता है। तो क्या जब मैं ये बात कर रहा हूँ, बेगम समरू को ये नहीं पता था कि उनका अंत इतने क्रूर तरीके से होगा कि उन्हें एक तोप पर उनके हाथ पांव मतलब उनको बांध दिए जाएंगे और पूरी क्रूरता के साथ उनके साथ पेश आया जाएगा?
देखिए, ऐसा हुआ था कि जो जब ये छोटी थी, मतलब जब ये तवायफ की ट्रेनिंग इनकी शुरू हुई थी तब, उसके बाद में जो सोमरे थे मर्सिनरी, वो उनके पैटर्न बन गए। जब पैटर्न बनने के बाद में वो काफ़ी लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया और खूब नाम कमाया भरतपुर में, फिर मुग़ल सेना के अंदर नजब जो शाह नजब थे उनके अंडर में, और इस तरह से उनका पूरा चलता रहा। फिर बेगम समरू ने कहा कि बस बहुत खून देख लिया हम लोगों ने, और इनकी ख़ास बात क्या थी सोमरे की भी और बेगम समरू की भी, कि ये जो इनकी टैक्टिकल अप्रोच थी बैटल में, जब लड़ाई होती थी तो अपनी सेना को किस तरह से मूव करना है या किस तरह से आगे बढ़ाना है या पीछे हटाना है, वो सब में माहिर थे बेगम समरू भी, वो भी। तो इसलिए इनका बहुत नाम था और इनकी अपनी सेना थी पर्सनल, तो इन्होंने कहा बहुत खून देख लिया, थोड़ा शांति वाला जीवन चाहिए। तो तब इन्होंने मांग की थी, तो इनको शाह आलम ने जागीर दी, सधना की जागीर दी। सधना काफ़ी बड़ी जागीर थी, वो टप्पल तक फैली हुई
थी। मेरठ के पास आपका जो,
हाँ मेरठ, मेरठ से वो पूरा बुलंदशहर से लेकर वो काफ़ी बड़ा एरिया है वो जो फैला हुआ था इनका, तो इस तरह से वो फैली हुई थी, बड़ी जागीर थी वो। तो अब सोमरे की डेथ हो गई उसके लगभग एक डेढ़ साल बाद, जब सोमरे की जब डेथ हो गई तो उसके बाद में बेगम समरू उसकी रूलर बन गई, शासक बन गई। अब हुआ क्या कि जब 8-10 साल और बीते तो दिल में प्रेम की लहरें उमड़ी, और उमड़ने के साथ में हुआ क्या कि एक लावासु थे, फ्रेंच ऑफिसर थे इनकी सेना में, तो वो उसी से इनका प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो इन्होंने छुपके शादी कर ली। अब छुपके शादी कर ली तो, लेकिन शर्त इनकी ये थी, बेगम समरू ने शर्त दी थी कि हमारा प्रेम ठीक है, शादी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सीक्रेट रहेगा, आप किसी को बताओगे नहीं इसके बारे में। लेकिन हुआ क्या कि अब वो थोड़ा डींगे हाँकता था सबके, अरे मैं हूँ, तो इससे इनको लग रहा था कि मेरे खिलाफ़ ना विद्रोह हो जाएगा। अब विद्रोह हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। और अच्छा फिर क्या हुआ कि जॉर्ज थॉमस, इनके पहले जॉर्ज थॉमस एक बहुत बड़े मर्सिनरी थे, उनके बहुत अलग से उनको लिखे जाने की जरूरत है, इस किताब में भी कुछ है मैंने दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि जॉर्ज थॉमस ने बेगम समरू के खिलाफ थोड़ा विद्रोह किया था, तो इसको दबाने के लिए ये वह झज्जर गई, उस समय वो मराठा से कमांडर थे वो,
आज का हरियाणा
ने, हाँ झज्जर आज का हरियाणा, ठीक है। तो ये अपनी 4 बटालियन लेके गई, लेकिन 2 बटालियन ने विद्रोह कर दिया वहाँ पे, तो ये 2 बटालियन तुरंत वापस आ गई बिना लड़े, बिना लड़े। तो इसको अपने लगा कि ये बस मेरी पोजीशन बहुत ख़राब है इस समय, तो विद्रोह कभी भी हो सकता है, मेरे को मारा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आधी रात को अपने प्रेमी के साथ भागी, रात को ये पालकी में है, वो घोड़े पर है। तो किताब जो बेगम सबरू का चैप्टर यहीं से शुरू होता है। अब वो उन पीछे से जो बागी हैं वो आ गए, तो अब उनको देखकर वो लड़ने के मूड में है। जो लाल वासु कहता है नहीं हम लड़ेंगे, हम चाहे थोड़े से हैं लेकिन हम लड़ेंगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं भाग निकलो यहाँ से। अब वो लाल वासु पिस्तल निकाल के वो पीछे मुड़ा है, तो ये पीछे से बेगम समरू ने आवाज़ मारी, उनके पास आया, तो दिखता है क्या कि बेगम समरू खून में लथपथ है। हुआ क्या है कि उसने अपने आत्महत्या, कि उन्होंने सुसाइड पैक्ट किया था आपस में दोनों ने, कि अगर एक मर जाएगा तो दूसरा जिंदा नहीं बचेगा। तो वो फ्लैट पड़ी है, खून निकल रहा है पूरा, जो सफ़ेद चादर थी वो सफ़ेद चादर बिल्कुल खून में भीगी हुई थी। उसने तो देखा ये क्या हो गया, तो जब ये देखकर उसने वो सुसाइड कर ली, उसने पिस्टल निकाल के खुद को गोली मार ली। अब वो बागी आ गए, उन्होंने बेगम सब को पकड़ गए और वापस ले गए, वापस ले गए उसको, वो घायल अवस्था में ही उसको गन कैरेज पे बांध दिया। गन कैरेज मतलब तोप में नीचे जो पहिए होते हैं उसके बीच में जो बॉडी होती है उसी से ऐसे बांध दिया हाथ फैला के। अब वो वहाँ पे करीब 1 हफ्ता बंधी रही, ना पानी ना खाना,
घायल अवस्था में,
घायल अवस्था में खून भी बह रहा होगा, मतलब पपड़ी जम गई होगी। तो अब वो ये था कि क्योंकि अच्छी थी, रूलर बहुत अच्छी थी, तो इसलिए जो इनकी अपनी कुछ एक जो नौकरानी थी, वो इनके जो अपने जो लॉयल जो वो थे जो फौजी अफसर, उन्होंने इसकी सहायता की, वो सहायता की, तो रात को इनको चोरी छुपे भोजन लाते थे। और उन्होंने ही इनका जो संदेश है वो जॉर्ज थॉमस, देखिए जॉर्ज थॉमस के खिलाफ भी लड़ाई करने गई थी अभी, उसी के पास इन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई और वो आया और उसने बिना लड़े उनको बागियों को हराया और इसको वापस गद्दी में बैठाया। देखो बड़ी मज़ेदार कहानी है, आप पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में तो आपको बहुत आनंद आएगा कि एक मतलब ये तो फिल्मों में भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा इसमें है कि बेगम समरू पहले उसने विद्रोह किया है, ये विद्रोह दबाने गई है, इनका आर्मी में विद्रोह हो गया है, ये वापस आई है, भाग रही है
और वही जिसके फंस गई था वो वापस मदद करने आया,
वो ही मदद करने आया
और गद्दी पर बिल्कुल बैठा,
गद्दी में बैठा के गया वो। तो इस तरह देखो कितना मज़ेदार कहानी है पूरी की पूरी। तो बेगम समरू का जीवन, और वैसे भी आप देखिए शाह आलम, जब शाह आलम को अंधा किया गुलाम कादिर ने, तो एक छोटा सा चीफ है रुहेला चीफ, तो रुहेला थे अफगान से जो लोग आए हुए थे, ये वो लोग थे, तो इनका सहारनपुर के आसपास का जो एरिया है इनका वो था, इनके कब्जे में था। और उसने शाह आलम को मतलब पहले एक बार किया तो बेगम समरू ने उसको भगाया था, मतलब पहले भी कब्जा कर लिया था लाल किले पर, तो बेगम समरू के कारण वो भाग पाया था। तो ठीक है, अब बेगम समरू अपने दूसरे कामों में व्यस्त थी, सिखों के साथ एक्चुअली लड़ाई चल रही थी उसकी, तो उस समय जो बेगम समरू है वो दूर थी और शाह आलम को पकड़ा गया। महाजी सिंधिया उस समय बिजी थे, मतलब अपने उनके जो मराठा सरदार थे आपस में उनकी खिचपिच चल रही थी, तो उसके कारण वो पहुँच नहीं पा रहे। अब वो पहुँच नहीं पा रहे, जो महाजी ने जो मदद भेजी भी वो कम थी, संख्या में कम थी, 2000 थे लोग, तो वो उसको विड्रॉ करना पड़ा वहाँ से गुलाम कादिर के सामने। अब वो सारी समस्या हो गई उसे। अब गुलाम कादिर को क्या चाहिए, केवल सोना जेवरात और ये जो महंगी चीज़ें हैं ये सब उनको चाहिए, वो मिल नहीं रही, मिल नहीं रही। तो शाह आलम को गद्दी से उतार के एक पपेट बैठा दिया और उसकी आँखें निकाल ली, आँखें ही नहीं निकाली। उसमें जो डायलॉग है वहाँ से ही शुरू होता है उस चैप्टर का, कि वो कह रहा है एक पेंटर को बुलाओ और मुझे हाथ में कटार है और दूसरे हाथ में एक हाथ से उसने बादशाह की दाढ़ी पकड़ी है, दूसरे हाथ में वो है उसकी निकाली हुई आँख, कि ऐसे मेरी वो बनाओ, चित्र बनाओ मेरा, तो इतना क्रूर। तो इस तरह से मतलब, और आँख अंधा तो हो गया बेचारा शाहरुख, लेकिन उसको बचाने वाली फिर बेगम सबरूई थी। तो बेगम सबरू का अपना बहुत बड़ा रोल था, इन्हें बहुत मतलब तरीके से मतलब सहायता की थी। और उसके बाद में जब ये घटना जो हो गई, जो प्रेम प्रसंग है, इसके बाद में तो फिर वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह रूल किया है। और देखो सदरंग चर्च बनाई है, अपना महल बनाया उसने, और मेरठ में एक चर्च बनाई है, और कलकत्ता में, इंग्लैंड में जो चर्चें थी उनको मदद भेजी है। तो अपना जो, और इसने जो मेरठ सरदना का जो रोड है वो भी इसी ने बनाया था, बहुत सारी सराय बनाई, जो सिंचाई की सुविधाएं बनाई उसने। तो एक अच्छी शासक भी बनी वो, अच्छी शासक बनी। तो मतलब खुद अंग्रेज़ों ने लिखा है इसके बारे में कि जो सरदना जागीर का जो लोग थे, जो किसान थे, वो लोग जो कंपनी की जो टेरिटरी थी उससे ज़्यादा खुश थे, वहाँ पर ज़्यादा खुशहाल भी थे और ज़्यादा खुश भी थे। और बल्कि लोग आके सरदना में बसते थे इसीलिए कि यहाँ पे सब कुछ मतलब अच्छा है जो कंपनी के शासन में नहीं है। अब और एक बात और बताना चाहूँगा तो कि बहुत बड़ी जागीर, मतलब जागीर बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी जागीर नहीं है, राज्य से तो छोटी है ना, वो बहुत छोटी है। और उस समय तीन बड़ी शक्तियाँ और तीनों इनके बॉर्डर पे हैं। जो मुग़ल हैं वो मराठों के अंडर में हैं, दिल्ली में बैठे हुए, इनके बिल्कुल सिर पे बैठे हुए। इधर सिख हैं जो कि बहुत लड़ाकू कौम थी और इन पर कभी भी हमला करती थी, इनकी चलती रहती थी। इधर कंपनी है, वो भी ये अपना मतलब अपना साम्राज्य बढ़ा रही है और इन पे जोर लगा रही है। और इन सब के बीच में ये अपना अस्तित्व बचाए हुए है, देखो, और बचाए रही 58 साल तक इन्होंने शासन किया। आप ये लगा, अपनी मृत्यु तक ये आज़ाद रही। तो एक बहुत बड़ी, कि तीनों को इन्हें आपस में ही लड़ा देती थी, खुद नहीं भी पीछे फंसती थी वो। तो वो उसकी अपनी जो एक बहुत अच्छी
डिप्लोमेटिक
बहुत अच्छी डिप्लोमेट है वो, तो वो इस तरह से सबको कैसे मैनेज कर रही है वो। तो हर तरह से वो, उसे पता है कि मेरे को किस स्थिति में किस तरह से मेरे को काम करना है। तो वो एक इसकी एक बहुत अच्छी खास बात है। तो इसलिए बेगम सबरू तो आज भी मतलब आप लगा लीजिए कि कोई भी इतिहास की पुस्तक जो नॉर्थ इंडिया के बारे में हो और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बारे में हो, उसमें बेगम सबरू का मेंशन तो ज़रूर ही आएगा, इतनी महत्वपूर्ण है वो।
आपने इतिहास के मेंशन का जिक्र किया है, मैं थोड़ा उसी पर इसको टटोल करके इस बातचीत को अंत करूँगा कि हमारे इतिहास में तवायफों का किस तरह जिक्र आता है, मतलब जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो उनका इतिहास है, या तवायफों का जिक्र कहाँ से शुरू होता है, कौन सा वो दौर था जब वो बिल्कुल अपने पावर के बिल्कुल पीक पर थी, और कैसे धीरे धीरे शनै शनै उनकी जो समाज में स्पेस है, सांस्कृतिक स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होता चला गया, सिकुड़ता चला गया।
देखिए, जो प्राचीन काल में इन्हें ही नर्तकी, राज नर्तकी या देवदासी कहा जाता था, जो मंदिरों में डांस करती थी वो देवदासी, वो हिंदू पीरियड है प्राचीन काल। और
ये कब से कब तक का, थोड़ा सा डेट के साथ आप बताते रहेंगे तो
करीब 8वीं शताब्दी तक। और क्योंकि तब से मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए, करीब 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण थोड़ा तेज हो गए, जैसे जो मोहम्मद गोरी था उसका आक्रमण 1191 में हुआ, 92 में हुआ दोबारा पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस है तब शुरू हुआ। तो और जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ता गया, मतलब वो ये मध्यकाल आ गया इस समय। तो मध्यकाल में जब मुस्लिमों का शासन आया तो जो राज नर्तकियाँ थी और दूसरी नर्तकियाँ थी, ये लोग क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा रहती थी, जो राज नर्तकी थी वो रॉयल कोर्ट्स में, मतलब जो राजा के दरबार में अपने प्रोग्राम देती थी या जो राजकीय जो कार्यक्रम है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो करती थी। और वही काम जो दिल्ली के सुल्तान थे, तो वो रहे 1526 तक, मतलब 12वीं शताब्दी से लेके
बाबर आया है,
बाबर, हाँ बाबर तक। तो ये लोग भी इसमें कई सारे जो थे वो लोग मतलब संगीत के लवर थे, और वो इनको नर्तकियों को, क्योंकि मनोरंजन तो चाहिए उनको, तो इसलिए जो ये जो नर्तकियाँ थी ये धीरे धीरे तवायफों की तरफ होने लगी। लेकिन मुग़ल काल में इनको प्रॉपर नाम तवायफ मिल गया।
अच्छा,
ठीक है। और मुग़ल काल में औरंगजेब को छोड़ दे तो सभी लोग, अकबर से लेके बाद तक, ये सभी लोग मतलब कला के प्रशंसक थे कि जैसे जहांगीर थे इनका मेन था आर्ट्स में, जो शाहजहाँ थे इनका था आर्किटेक्चर में, तो अकबर था उसका तो वो ओवरऑल था कि वो उसका आर्किटेक्चर में भी रोल है और कला में भी है। उसके बाद जो नृत्या थी वो किंचन ही कहता था।
अच्छा,
तो इस तरह से, तो इसलिए
इस दौर में इनके हरम वगैरह कैसे हुआ करते थे सर, थोड़ा सा अगर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताएं।
देखिए, हरम का तो एक बिल्कुल क्लोज डोर है, उसके अंदर जो जैसे सलीम की कहानी है तो वो बिल्कुल एक तरह कैद में रहती थी वो लोग। जो उसमें हरम में एक बार चली गई तो उसको वो फिर बाहर की दुनिया देख नहीं पाती थी, वो तो वो सब कुछ अंदर ही होता था। अंदर सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको, वो बात है, लेकिन अब ये है कि वो राजा एक है, वो अकेला ही जाता है, इसके अलावा कोई मर्द उसमें अलाउड नहीं है। जब मर्द अलाउड नहीं है तो बट नहीं चला उनकी जो सब कुछ नहीं होता, तो 300 हैं या 500 हैं या 1000 हैं उसमें अंदर, तो वो लेकिन वो पैसा उनके पास था, वो पैसा था। और यही एक कारण था कि अब जैसे आपको कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो फैजाबाद की जो नवाब की जो पत्नियां थी उन तक को लूट लिया था, तो उसकी बहुत बुराई होती है अंग्रेज़ों की इस बारे में। तो ऐसे ही वो हर जगह था, जैसे गुलाम कादिर था, इसने जो हरम की जो अपनी लेडीज़ थी इनके सारे को सबको निकाल लिया था, पैसा निकालने की कोशिश की थी, तो इसकी इसलिए बुराई होती है। तो वो मतलब लोगों की इन हरम के प्रति इज्जत भी थी कि ये राजा का या बादशाह का दरबार है या नवाब का दरबार है, नवाब का मतलब परिवार है एक तरह से, वो परिवार की तरह तौर पर लेते थे, लेकिन बोलो एग्जैक्टली वो पत्नियाँ नहीं हैं उनकी, तो उसमें सब तरह के उसमें हैं, मसाज करने वाली हैं, डांस करने वाले हैं, गाने वाले हैं। जैसे औरंगजेब था, उसने कोशिश की थी कि म्यूजिक को इसको मतलब दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल वो खुद अपने हरम में नहीं कर पाया ख़त्म, और भागी बात तो छोड़ दीजिए।
अच्छा,
तो उसके बाद में जो बादशाह हुए वो उनमें कई सारे थे जिन्होंने दबाने की कोशिश की, और ऐसे भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे मुग़लों के बाद पैसा ख़त्म होता गया तो वो इनके भी दुर्दिन शुरू हो गए। लेकिन तब थोड़े नवाब पैदा हो गए उस समय बंगाल में या अवध में, तो साउथ में भी, तो वहाँ पे इनको थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा। महाराणा रणजीत सिंह वगैरह जो आए थे इनके दरबार में थी नृत्यियाँ, तो इस तरह से तो इनको चलता रहा। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो ये पूरा सिस्टम ही इनका डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे जहाँ जहाँ उनका राज होता गया वहाँ वहाँ इनके अपने जो कानून थे इनके ख़िलाफ़ वो आते गए, तो इनके जो डाउनफॉल वहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाने लगे ये लोग। क्योंकि अब जो लोग इनके पास आते हैं उनके पास पैसा नहीं है, जब उनका पैसा कम हो गया तो इनको मिलने वाला पैसा कम हो गया, तो जहाँ पहले इनके पास खूब पैसा होता था, खूब सोना चांदी फैशन वगैरह सब कुछ होता था, वो उसके लिए इनका पैसा ही नहीं बच रहा। तो वो जो हवेलियाँ थी, जो कोठे जो थे हवेलियों के रूप में, वो सिकुड़ गए, वो एक रूम या दो कमरों के सेट रह गए
धीरे धीरे
धीरे धीरे, वो डाउनफॉल आ गया
आर्थिक और सामाजिक।
हाँ, आर्थिक भी सामाजिक भी, और दाग लग गया जो एक जिसका नाम एक इज्जत से लिया जाता था कभी, वो अब थोड़ा बुरा हाल हो गया। आपने देखा होगा जैसे कि मुजरों में लोग जाते थे बचपन में, हमने खुद देखा है कि जो मतलब पेरेंट्स से वो खुद भेजते थे। मेरे को जो सबसे पहले तवायफ की कहानी मेरे दादाजी ने सुनाई थी।
क्या थी कहानी सर, इस पे ख़त्म करते हैं।
तो एक्चुअली मेरे हम लोग पंजाब से हैं, तो लैलपुर में, जो लैलपुर लाहौर से बहुत दूर नहीं है, तो मेरे दादाजी जब हम यहाँ पे थे मेरठ में, तो यही मेरा जन्म हुआ, तो शाम को दादाजी रोज़ ना कहानी सुनाते थे मेरे को रोज़। उन्होंने राणा जैसे प्रताप की, शिवाजी की, छत्रसाल की,
लाल बहादुर शास्त्री
की, रूप बसंत की, ये सब कहानियाँ वो डेली शाम को मेरे को कहानी सुनाते थे। वो हमारी खूब मतलब, क्योंकि मैं उनके पास ही पला बड़ा। तो अब वो मज़े की बात ये थी कि उन्होंने एक दिन कहा, लाहौर की बात चल रही थी कि लाहौर की, जिसने लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा, एक पंजाबी कहावत है कि लाहौर जिसने नहीं देखा कुछ नहीं देखा उसने लाइफ में। तो बता रहे, तो उन्होंने रात डाली सो गई तो कहानी सुना था एक, तो फिर उन्होंने तवायफ की कहानी सुनाई कि पहले तो बताया कि क्या सेटअप होता था। तो मैं तो उस समय छोटा ही था, 12-13 साल का रहा हूँगा मैं, तो बताया सेटअप बताया कि क्या होता है, समाज में इज्जत कैसी होती थी इनकी, वो सब कुछ बताया। और उन्होंने ही पहली बार बताया था कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए वो जगह है, नेगेटिव में तो खुद को ही बदनाम करोगे और सबको बदनाम करोगे। और फिर मेरठ में तीन जगह थी जहाँ पे तवायफ़ें होती थी, और लेकिन इंटरमिस्टर था जो एक ढोलकी मोहल्ला था, वहाँ पे हम मतलब निकल जाते थे जब लड़के लड़के जो तो वो सुनते थे कि ढोलक की आवाज़ आ रही है, गाने की आवाज़ आ रही है, तो वो हमने देखा है। हालांकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम सड़क पे जाएं, इवन ये किताब लिखना भी साहस का काम था। मतलब मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े इस टॉपिक पे, तो बहुत काफ़ी टाइम से लिखना चाहता था। जब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मूंछें सफ़ेद हो गई, तब मैंने कहा अब मैं लिख सकता हूँ, कोई मुझे उंगली नहीं उठाएगा तो कि किस विषय पर लिख रहे हो आप। तो वो एक सामाजिक जो सोशल स्टिग्मा है, जो एक दाग है, वो तो है इस टॉपिक के साथ, वो बन गया है लोगों के दिमाग में। फिर भी एक क्यूरियस सब्जेक्ट है, लोग जानना भी चाहते हैं और बात भी नहीं करना चाहते। वो मैंने गांधी जी के साथ जो डायलॉग दिया है वो, कि लोग हमें देखना भी चाहते हैं और दूर भी रहना चाहते हैं समाज जो खुले में, तो वो एक समस्या
है। इस किताब का यही मकसद था कि हम हिंदुस्तान की तवायफ़ों के बारे में कुछ आदर के साथ बात कर सकें। तवायफ़ और आदर एक साथ इस पूरे वाक्य को रखना सामान्यीकरण हो चला है, क्योंकि हमें लगता है कि तवायफ़ों का काम सिर्फ सेक्स वर्कर का था या वो समाज में बहुत ही लुक डाउन नज़रिए से देखी जाती हैं। लेकिन ये हमारे सिनेमा की, हमारे समाज की देन है। इससे पहले जैसे इस किताब में हमने एक राइटफुल हिस्सा उनको देने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया, बेगम समरू की, अजीज़न बाई की, हुस्ना बाई की, धर्मन बीबी की, बेगम हज़रत महल की, जब आप कहानियाँ पढ़ें तो दिल में कुछ अधिक सम्मान जोड़ पाएँ, इसके अलावा थोड़ा और संवेदनशील होकर के ये देख पाएँ कि इतिहास में नायक कोई नहीं होता, और जिन नायकों की कहानी हमें बताई गई है उसके अतिरिक्त भी ऐसे बहुत बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी औरतें थीं, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मर्द थे जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में पीछे से योगदान दिया है, बैकस्टेज में बहुत बड़ा उनका रोल रहा है, चाहे वो पैसे से रहा हो, चाहे वो जा करके जंग करना रहा हो। और अंत में जो एक किताब भी काम करने की कोशिश करती है कि आपको एक नया नज़रिया दे सके ताकि आप कुछ और उत्सुक हों, और जैसे इस किताब में जो मिसलेनियस में बहुत सारी किताबों का जिक्र है, बहुत सारे यूट्यूब के गानों का जिक्र है, आप उन पर जाएं, कुछ और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं, भूख को शांत मत होने दीजिएगा, या आपके लिए नए रास्ते को लेके गांधी साहब आप आए, आपने इतना समय दिया, खूब तफसील से आपने हमें किस्से सुनाए, बातें बताई, आपका बहुत शुक्रिया। अंततोगत्वा ये किताब जो है ये आपको भारत की 6 तवायफ़ों के बारे में खूब विस्तार से बताती है। कुछ एक जगह ऑनरेबल मेंशन कुछ और चीज़ों का भी आता है, कुछ और लोगों का भी आता है, पर वो एक छेपक के रूप में है। लेकिन ये पूरी इन 6 के बारे में खूब तफसील से बात की गई है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कुछ जो सॉफ्ट हिस्ट्री की अप्रोच है उसके बारे में बात है। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इसकी कीमत है 599 रुपये, और ये आपको फिंगरप्रिंट प्रेस से मिल जाएगी, अमेज़न वगैरह बाकी जगहों पर भी कुछ सस्ती मिल सकती है। इस किताब को ज़रूर पढ़ें, कुछ और किताबें पढ़ने के लिए हमें रिकमेंड करें, आगे किन किताबों के लिए हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में बताइएगा। मेरा नाम दीपक था, आपने ललन टॉप पर इस बातचीत को सुना, आपका बहुत शुक्रिया।
बाड़ा, कुछ ललन टॉप सुनते हैं।